آئیے چلتے ہیں سورت قصص پہ. قصص کہتے ہیں قصے کو, سٹوریز. اس سورت میں آپ کو مختلف قصے دکھیں گے. پہلی بات ہے, اگر آپ میں سے کوئی چاہے کہ حضرت موسیٰ کی سیرت پڑھے. سیرت کس کو کہتے ہیں؟ ترتیب کے ساتھ کسی کے حالات زندگی کو پڑھنا, تو وہ سورت قصص کو پڑھ لیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات زندگی ترتیب کے ساتھ پڑھنے ہو تو یہ سورت اس میں بہت خوبصورت ہے. ہر بڑے انسان کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. آپ نے یہ جملہ بہت دفعہ سنا ہوگا. اس ایک سورت میں آپ کو چار عورتوں کا تذکرہ ملے گا, یعنی موسیٰ کو موسیٰ بنانے والی چار عورتیں, جس میں ماں بھی ہے, بہن بھی ہے, اور اسی طرح سے بیوی اور بیٹی کا کردار آپ کو دکھے گا. پھر اسی طرح سے اس سورت کو آج امت مسلمہ کے ناطے سے ہم کیسے پڑھیں گے؟ آپ کو اس میں چار مختلف ٹائپ کی لیڈرشپ دکھے گی. پولیٹیکل لیڈرشپ دکھے گی, فائنینشیل لیڈرشپ دکھے گی, ریلیجس دکھے گی, اور سوشل دکھے گی. پتہ کیا چلا؟ کہ جب سیاست چلانے والے, مذہب چلانے والے, اور اکنامکس چلانے والے, اور معاشرتی زندگی چلانے والے لوگ اللہ کے دین سے کٹے ہوتے ہیں تو معاشروں میں کس طرح بے چینی ہوتی ہے, لیکن جب اللہ تعالیٰ اپنا کام لینا چاہتا ہے تو لے لیتا ہے. بالکل سٹوریکل ہے, اس لیے اس کو ایز اے سٹوری ہی پڑھیں گے, تھوڑی بہت وضاحت کے ساتھ. اور اسی میں آپ کو موسیٰ کی شادی کے کس کی کہانی بھی سمجھ آئے گی کہ اس دور میں شادیاں کتنی آسان ہوتی تھی. آئیے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. توسیم میم تلک آیات الکتاب المبین. توسیم میم, یہ کتاب مبین کی آیات ہیں. ہم موسیٰ اور فرعون کا کچھ حال ٹھیک ٹھیک تم کو سناتے ہیں, ایسے لوگوں کے فائدے کے لیے جو ایمان لائیں. واقعہ یہ ہے کہ فرعون نے زمین میں سرکشی کی اور اس کے باشندوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا. ہائی لائٹ کر لیجئے فرعون کو. یہ ایک پولیٹیکل لیڈر کے طور پر جہاں ہمیں دکھے گا. فرعون کی پالیسی کیا تھی؟ ڈیوائیڈ اینڈ رول, لوگوں کو فرقوں میں ڈال دو اور لوگوں کے اندر مختلف قسم کی کلاسز شروع کرو. کلاسز امرائیہ کے لوگوں کو کانشیس کر دو, اور کچھ لوگ جو ضمیر بیچنے والے ہوتے ہیں ان کے ہاتھوں میں لوگوں کے مقدر کو بیچ دو. ان میں سے ایک گروہ کو وہ ذلیل کرتا تھا, وہ اس کے لڑکوں کو قتل کرتا اور ان کی لڑکیوں کو جیتا چھوڑ دیتا. فی الواقع وہ مفسد لوگوں میں سے تھا, اور ہم یہ ارادہ رکھتے تھے کہ مہربانی کریں ان لوگوں پر جو زمین میں ذلیل بنا کر رکھے گئے تھے, اور ان کو پیشوا بنا دیں, اور انہی کو وارث بنائیں, اور زمین میں ان کو اقتدار بخشیں, اور ان سے فرعون, حامان اور اسی کے لشکروں کو وہی کچھ دکھلا دیں جس کا ان کو ڈر تھا. حامان کا لفظ جہاں جو ہے یہ ریلیجس لیڈر ہے. جب ریلیجس لیڈرز دنیا پرست ہو جاتے ہیں, جو دینداری کو دکانداری بنا لیتے ہیں, جو اپنے سوا کسی دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتے, جن کے اندر عہدوں کی لڑائیاں ہوتی ہیں, اور جو لوگ بے ضرر طریقے سے, جو بغیر کسی ذاتی فائدے کے دین کی بات بتانے والوں سے دشمنی لیتے ہیں, تو ایسے لوگ معاشروں کو کنفیوز کرتے ہیں. یاد رکھیں ہر دور میں بہت تھوڑے صحیح, لیکن ایسے لوگ موجود رہے جنہوں نے لوگوں کو دین اس طرح کا بنا کر پیش کیا کہ جس کے بعد لوگوں کو وہ سب سے بڑے محسن لگے. اور آج کے دور میں بس یہی لوگ ہیں جو قابل عمل ہیں. تو یہ اس دور سے کہانی تھی. حامان کون تھا؟ دیندار شخص تھا, تورات جانتا تھا, لیکن فرعون کے دربار میں رہنے کی وجہ سے اس نے دین کو حکومت کی مرضی کا کر کے لوگوں کے لیے ایسا دین پیش کر دیا کہ جس کو پانے کے بعد ساری اتھارٹی بڑے لیڈرز کی ہو جائے. آج بھی آپ دیکھیے کہ جب دین کے اوپر دنیا کی چھاپ پڑتی ہے تو اسی طرح کے لوگ دکھتے ہیں. آگے حضرت موسیٰ کا قصہ اب ان کے بچپن سے شروع ہوتا ہے. انجوائے کیجئے گا, اور اس واقعے میں آپ کو جذبات کی بہت باریکیاں دکھیں گی, یعنی ایموشنلی آپ نے اس کو سننا ہے. اگر آپ ایموشنل ٹچ فیل کر گئے ان آیتوں کو سنتے وقت, تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ نے ان آیتوں کی خوبصورتی کو پا لیا. وَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي. ہم نے موسیٰ کی ماں کو اشارہ کیا, یعنی ان کے دل میں ڈال دیا کہ اس کو دودھ پلاؤ, پھر جب تجھے اس کی جان کا خطرہ ہو تو اسے دریا میں ڈال دے, اور کچھ خوف اور غم نہ کر, ہم اسے تیرے ہی پاس لے آئیں گے اور اس کو پیغمبروں میں شامل کر دیں گے. سوچیے کتنا کڑا امتحان تھا. آپ میں سے جو مائیں ہیں وہ اس بات کو سمجھ سکتی ہیں. سب سے زیادہ ماں کانشیس ہوتی ہے دودھ پیتے بچے کے لیے. آپ دیکھیے جب نیو بورن بیبی گھر میں آتا ہے نا, تو پہلے بچے پیچھے پڑ جاتے ہیں, پھر ان کی طرف وہ توجہ نہیں ہوتی. ماں کا دل اس میں کھا رہی ہے, تو اس میں پی رہی ہے, تو اس میں سوتے میں اس کو ہے جاگ گیا ہے, گیلا ہوگا ہے, اس کو بھوک لگ گئی. اور ایسے بچے کو اللہ کہتا ہے اس کو دریا میں ڈال دو. کتنا دل ڈولا ہوگا ماں کا, کتنی بار اس کو چوما چاٹا ہوگا, گلے سے لگایا ہوگا, اس کے ہاتھ چومے ہوں گے, اس کے پاؤں چومے ہوں گے, جا میرے بچے دریا کے حوالے، لیکن یاد رکھی یہی بندگی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا، مومن کی مثال ام موسیٰ کی ہے، اپنے ہی بچے کو دودھ پلائے اور اجرت بھی وصول کرے. جب ماں نے اللہ کے حکم پہ بچے کو دریا میں ڈال دیا، اللہ نے اس کو واپس پلا دیا. آج جب بچوں کی دینی تعلیم کی بات کی جائے تو بعض ماؤں کو یہ حکم دریاؤں میں ڈالنے والا ہی لگتا ہے. وہ کہتی ہیں پھر یہ دنیا میں نہیں چلیں گے، یہ ناکام ہو جائیں گے، یہ فیل ہے. یعنی ان کا خیال ہے کہ جب دنیا کی تعلیم کے سلسلے میں ڈال دیا تو دیکھو اب ہمارے بچے کتنے خوش قسمت ہو گئے اور کتنے وہ خوش رہیں گے. حالانکہ حقیقت میں کبھی آپ نے دیکھا کہ دین کی تعلیم پڑھنے والے سڑکوں پہ رولے، اور جن کو اللہ کے دین کے لیے چن لیا گیا ان کی دنیا بھی خراب ہوئی؟ کبھی ایسا نہیں ہوا. لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم اتنے اپولوجیٹک ہو جاتے ہیں. اللہ نے اس بچے کے ساتھ ماں کو جو وعدے کیے تھے ان وعدوں میں دیکھی، اس کو واپس تیرے پاس لائیں گے، اور واپس کس صورت میں لائیں گے؟ پیغمبر بنا کر. تو کبھی کبھی اللہ کے نام پر رسک لینے کی بھی ضرورت ہے. آخر کار فرعون کے گھر والوں نے اسے دریا سے نکال لیا، دودھ پیتا بچہ دشمنوں کے گھر میں چلا گیا. آج آپ کیوں فکر کرتے ہیں کہ مسلمانوں کی نسلیں دشمنوں کے ہاتھ میں اور دشمنوں کی بڑی نظریں ہم پہ؟ نہیں، اللہ والا توکل پیدا کریں. آپ اپنے دودھ میں وہ تاثیر تو پیدا کریں کہ بچپن میں موسیٰ نے کہتے ہیں 3 دن کا روزہ رکھ لیا. موسیٰ نے یہ آیت نہیں پڑھی تھی کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، لیکن وہ بچہ ہے جب غیر کے گھر میں گیا، دشمن گھر میں گیا، دودھ ہی نہیں پی رہا کسی کا. امیجن کریں، دودھ پیتا بچہ گھر میں آ گیا اور دشمن یعنی فرعون اور اس کے گھر والے لے کر آ گئے. کیوں؟ تاکہ وہ ان کا دشمن بنے اور ان کے لیے سبب رنج بنے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بعض دفعہ انسان کچھ چیزوں کو اپنی دنیا بنانے کے لیے استعمال کرتا ہے، وہ اس کے لیے ناسور بن جاتی ہیں. کبھی ایسا نہیں ہوتا کوئی چیز آپ نے رات جاتی پکڑ لی، بعد میں پتہ چلا وہ چوری کی تھی، مقدمہ ہو گیا. کوئی چیز لے آئے گھر میں، پتہ چلا اس میں کوئی جرم تھا، وہ ساری چیزیں آ گئیں. کوئی وائرس ایسا کھول دیا کمپیوٹر میں، آپ کی ساری فائلیں بگاڑ دیں. تو فرعون تو اس کو کچھ اور سوچ کے اٹھا رہا تھا، لیکن اس کو بعد میں اسی سے دکھ ہوا. کائن نہ فرعون نہ وہ حامان نہ جنودہما کانوا خاطئین. واقعی فرعون اور حامان اور ان کے لشکر اپنی تدبیر میں بڑے غلط کار تھے. کیا پتہ چلا کہ بڑے بڑے انٹلیکچوئل قسم کے دنیا پہ رول کرنے والوں کے بھی بعض فیصلے ان کے اپنے حق کے خلاف پڑ جاتے ہیں، غلط فیصلے ان سے بھی ہو جاتے ہیں. فرعون کی بیوی نے اس سے کہا، کون تھی یہ؟ حضرت آسیہ. کہنے لگی، یہ میرے اور تیرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک، اسے قتل نہ کرو. کیا عجب ہے کہ یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو یا ہم اس کو بیٹا ہی بنا لیں؟ اور وہ انجام سے بے خبر تھے. کہتے ہیں کہ چونکہ بی بی آسیہ نے یہ جملے بولے تھے، اللہ نے اس کی دعا سن لی اور بی بی آسیہ کو اسلام نصیب ہو گیا. جب آگے ہم پڑھیں گے جا کے انشاءاللہ سورۃ تحریم میں ان کا تذکرہ ہے کہ جادوگر مسلمان ہوئے تو اس منظر کو دیکھ کے یہ بھی مسلمان ہو گئی. اور فرعون نے کیا اس وقت کہا؟ کہنے لگا، ہاں تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا، میری نہیں. اور وہی وہ اس کو نصیب نہیں ہوا. اگر ایسے موقع پہ فرعون بھی یہ کہتا نا، ہاں شاید یہ بچہ ہمارے لیے بھاگوان ہو، یہ بچہ ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، تو اس کو بھی ہدایت ملتی. تو کیا پتہ چلا، کبھی غلط بات منہ سے نہیں نکالنی چاہیے، کوئی نہ کوئی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. اور اسی طرح بعض دفعہ آپ دیکھیں کہ کوئی آپ کو اچھا کام کر رہتا دیکھے اور آپ کو آگے سے کہ نا آپ اچھا کام ہے، تو بعض لوگ کہتے ہیں نہیں 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 ایسے تو نہیں ہے، شکریہ نہ بولے. نہیں، ایون میں نے دیکھا آپ کسی کو اچھا کام کرنے کے بعد کہنا دیکھیں تو کیا آپ کے جزاک اللہ، کہتے ہیں نہیں ایسے تو نہ کریں، نہیں نہیں اس کی ضرورت نہیں تمہیں، کیونکہ آپ کو اللہ سے جزا نہیں چاہیے. تو ہمیشہ یاد رکھے، کوئی اچھا کام ہو، کوئی کہے یہ کام کرنا ہے، کہنا ان شاء اللہ بالکل ٹھیک، کبھی نیگیٹیوٹی پہ نہ آئے. اور یہی ہوا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر میں رکھا. ادھر موسیٰ کی ماں کا دل اڑا جا رہا تھا، اپنے اوپر لے کے سوچے تو آپ کا بھی دل اڑے گا، کیا دل پہ گزری ہوگی. وہ اس کا راز فاش کر بیٹھنی اگر ہم اس کی ڈھارس نہ بندھا دیتے تاکہ وہ ہمارے وعدے پر ایمان لانے والوں میں سے ہو. کیا پتہ چلا کہ اپنے راز کو راز رکھنا یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے. منہ دودھ پیتے بچے کی بات ماں کے تو منہ پہ رہتی ہے، بچہ تو دل میں ہوتا ہے، اس کی باتیں زبان پہ ہوتی ہیں، لیکن اللہ نے اتنا صبر دیا، ورنہ وہ ماں خود ہی کہہ دیتی، ارے وہ دیکھو میرا بچہ ڈوب رہا ہے، وہ دیکھو میرا بچہ سمندر میں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ دکھ دیتا ہے نا تو اس کو سنبھالنا بھی اللہ ہی سکھاتا ہے. بعض دفعہ آپ کسی دوسرے کو کسی دکھ میں دیکھ کر کہتے ہیں کیسے صبر کیا ہوا ہے، ہائے یہ کیسے اس بیماری میں سروائیو کر رہا ہے، ہائے یہ کیسے اس دکھ میں بھی ہنستا بولتا ہے، دیکھو اس کا فلاں بھی مر گیا فلاں بھی مر گیا پھر بھی ہنستا بولتا ہے. لیکن جس پہ پڑتی ہے وہ سہ جاتا ہے. تو یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، جب اللہ تکلیف ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ اس تکلیف کو پھر اس تکلیف سے سنبھلنے کی توفیق بھی دے دیتا ہے. فرمایا، اس نے بچے کی بہن سے کہا، اس کے پیچھے پیچھے جا، چنانچہ وہ الگ سے اس کو دیکھتی ہی رہی، دشمنوں کو اس کا پتہ نہ چلا. क्या पता चला यहां मामलात सिखाए जा रहे हैं, भाई बहन के रिश्ते की मोहब्बत है। देखिए, खैर का नुक्ता है आगाज औरत की कुर्बानी और हिकमत से हो रहा है। अगर मूसा की माँ कुर्बानी ना देती और अपने बच्चे को दरिया में अल्लाह के हुक्म से ना डालती, अकल ने क्या सिखाया होगा मूसा की माँ को? तेरी गोद में बच्चा महफूज है, दरिया में डूब जाएगा, देख लेंगे जो भी होगा, फिरौन के दरबारी आएंगे, ढूंढेंगे, देखेंगे, तो छुपा लेना, कुछ भी कर लेना। अकल तो यही कहती ना, हम अपने बच्चों को ज्यादा डिफेंड कर सकते हैं, हम अपने बच्चों के टेक केयरर हैं, हम इनको नरमी से पालेंगे। हालांकि आपको पता है, जिनको जितनी गोदों में बिठाते हैं वो उतने नाजुक होते हैं। अल्लाह के हवाले, मौसम की गर्मी और सर्दियों के हवाले करके देखें अपने बच्चों को, अल्लाह उनकी हिफाजत करेगा। और हिकमत किसकी है? बहन की। छोटी सी बहन है और वो बच्चे को वहां जाकर देखकर अगर शोर मचा देती, लोगों ये मेरा भाई है इसको पकड़ो, तो क्या वो मूसा को मरवा ना देते? तो औरत के अंदर हिकमत होगी ना तो नस्लें संवरेंगी। दुश्मनों के मुंह में पलने वाली औलादें भी इंशाल्लाह मूसा की तरह उन्हीं का दिल जलाएंगी बड़े होने पर, लेकिन शर्त यह के पीछे औरत के अंदर ईमान, उसके दूध में वो बरकत हो कि वो बच्चा उस मुआशरे के अंदर रह कर भी लोगों को खैर का पैगाम दे सके। क्या कहने लगी वो औरत? वो इसको दूर से देखती रही कि दुश्मनों को इसका पता न चला, और हमने बच्चे पर पहले ही दूध पिलाने वालियों की छातियां हराम कर दी। ये हालत देखकर इस लड़की ने उनसे कहा, मैं तुम्हें ऐसे घर का पता बताऊं जिसके लोग इसकी परवरिश का जिम्मा लें और खैर ख्वाही के साथ इसे रखें। इस तरह हम मूसा को इसकी माँ के पास पलटा लाए ताकि इसकी आंखें ठंडी हों और वो गमगीन ना हो और जान ले कि अल्लाह का वादा सच्चा था, मगर अक्सर लोग इस बात को नहीं जानते। जब माँ दे रही थी तो अल्लाह ने चार वादे किए थे ना, अल्की ही फिल जम्मी वला तखाफी वला तखसनी इन्ना रादूहु इलैक वजाइलुहु मिनल मुरसलीन या मिनल मुरसलीन। इधर आप देखिए अल्लाह ने वो सारे वादे पूरे कर दिए, ठंडी होगी माँ, बच्चे वापस आए। बच्चा कैसे वापस आए? मैंने इनकी स्टोरी पढ़ी थी बताया नहाया में, जब मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के घर में गए तो वो फिरौन का मसला बन गए। और आप जरा अपने घर के किसी न्यू बॉर्न बेबी को तो सब्र में लाए, जब बच्चा रोने लग जाता है तो क्या हाल होते हैं, सारे घर की उल्टी पुल्टी होनी शुरू होती है। अब महल में गए और मूसा ने रोना शुरू कर दिया, दूध दे रहे हैं ले ही नहीं रहे। किसी औरत का दूध, बच्चे बच्चा तो फौरन दूध ले लेता है जब भूखा होता है, मूसा ने किसी औरत का नहीं लिया। ये भी तो सब्र अल्लाह ने सिखाया। आखिर जब बहन ने फरमाइश की कि मैं एक औरत को जानती हूँ, हो सकता है ये बच्चा उसका दूध पी ले, कहा चलाओ, ये नहीं कहा मेरी माँ है या ये मेरा भाई है। जब मूसा की माँ को बुलाया गया, बच्चे ने दूध पी लिया। अब वो माँ फिरौन की मजबूरी बन गई। यहाँ उम्मत मुस्लिमा को रुक के सोचने की जरूरत है। दुआ कीजिए आज हम मुसलमान गैर मुसलमों की मजबूरी बन जाए, उनके काम हमारे बगैर हो ही ना। जैसे मूसा फिरौन की मजबूरी बना, अब फिरौन कहने लगा चलो इसकी माँ को भी, इस औरत को भी रख लेते हैं। कहा नहीं, मैं नहीं रहती, मेरे और बच्चे हैं, ये अना भी दे दे अल्लाह आज मुसलमानों को, हमें कोई एक वीजा दे, हम कहते सारे खानदान का बुला लो, हम इधर ही रह लेंगे, फिर हमसे जूतियां भी सीधी कराओ हम करेंगे। ये गैरत पैदा की। कहा नहीं, मैं नहीं रह रही, तुम्हारी मजबूरी है, दे दो, मैं घर ले जाती हूँ अपने बच्चों के साथ, इसको पालूंगी। अच्छा, मूसा दोबारा अपनी कुटिया में भिजवा दिए गए। फिरौन के महल से कहते हैं कि खाना पानी, आज के दौर में अब कह लें कि वो क्या बच्चे क्या कुछ खाते हैं, सेरेलेक और क्या कुछ बेबी फूड और बच्चों की जो चीजें, वो इतना ज्यादा मूसा की माँ के घर आने लगा कि मूसा के भाई बहन बाकी बहन भाई भी खाने लगे। ये अल्लाह के काम है। आज उम्मत मुस्लिमा को अल्लाह समझ दे दे, दूसरों के रिसोर्सेज हम यूज करके अल्लाह का दीन सिखाएंगे। और ऐसा हो रहा है कई जगह, बिलीव मी, कई हमारी क्लासेस ऐसी हैं जो चर्चिस में होती हैं और हम उनके प्रोजेक्टर्स यूज करते हैं और हम उनकी कुर्सियां और मेज कई नॉन मुस्लिमों के म्यूजियम्स और ऐसी जगहों में होती हैं। यहाँ का मुझे इतना अंदाजा नहीं, लेकिन कुछ मुल्कों में इतना ओपन है कि वो आप एक दरख्वास्त दें कि हमें वुमेन्स की कोई एक्टिविटीज शुरू करनी है, वो खुशी खुशी आके आपको चीजें देंगे, जाए करें। चीजें उनकी इस्तेमाल हम करते हैं, और जो उनके माहौल और जो वहां खूबसूरती से चीजें रखी हुई वो तो हमारे अपनी जगहों में होती कोई नहीं है, और हम खुशी से इस्तेमाल करते हैं और दुआ दे के आते हैं कि अल्लाह इन जगहों को अपने दीन के लिए चुन ले। दुआ कीजिए अल्लाह जमीन के चप्पे चप्पे को अपने दीन के लिए चुन ले। तो जब मुसलमान को हिकमत आती है, अल्लाह उसको यूं चीजें गैब से दे देता है कि उसका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता। और इस तरह फिर मूसा अपनी माँ के घर आ गए, रहना तो उधर ही था ना, माँ भी वही, भाई बहन भी वही, कुटिया भी वही, और तरबियत करनी थी। हजरत यूसुफ को तो नहीं वापस बुला लिया कुएं से निकालकर अल्लाह ने याकूब के पास, क्यों? क्योंकि यूसुफ की बेसिक तालीम हो चुकी थी बाप के घर। मूसा को अगर फिरौन के महल में बचपन से पलने दिया जाता माँ के बगैर, तो मूसा बिगड़ जाते। समझ आ रही है बातें? कायनात के इशारे समझिए। आप अपने बच्चों की तरबियत खुद करें, बेबी सिटर्स के हवाले ना डालें उनको, गैर मुस्लिम मुल्कों और कार्टून बनाने वालों को उनकी बेबी सिटिंग ना सौंप दें। आप अपने बच्चों के हाथों में गैजेट पकड़ाकर अब ये कहते हैं कि ये मेरे बच्चों को बहला लेंगे, जरा मैं थोड़े पैसे कमा लूं, क्योंकि अभी इसके वापसी पे खिलौने भी बहुत से लाने हैं, जुल्म करते हैं। कम अज कम बच्चों वाली माएं अपने आप को आजाद करें। आप कुरान पढ़े बच्चे को गोद में बिठाकर। हमारे अपने साथियों में कुछ साथी हैं दिन रात काम करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह एडमिन है फुल टाइम, कानो कान खबर नहीं होती, कहते हैं बच्चे गोदों में पैदा हुए, गोदों में ही सोते हैं, यहीं खाते हैं, इतनी आदत हो गई। एक साथी की बात है, वो कहती जब तक मैं आपकी रिकॉर्डिंग ना चलाऊं ये सोता ही नहीं है, इतनी उसको आदत हो गई। इसी तरह एक जगह मैं गई तो छोटी सी बेबी थी, किसी की मिली तो मैंने पकड़ा तो प्यार से चुप गई, कह रही इसको आपकी आवाज की पहचान है, ये इतनी आपकी आवाज सुन के आई है। और अब कुछ ऐसे, वो कहती कुरान की तिलावत चलाते हैं बच्चे चुप हो जाते हैं, चुप ना करें घर। वो जैसे एक बच्चा है तो सब माँ आती है तो स्कूल में रहता है पूरा वक्त, बेबी सिटिंग जो हमारे स्कूल में वहां जगह है तो उसमें स्पीकर हैं, तो जो वहां चल रहा होता है वो बच्चे भी सुनते हैं। कहती वहां ये बच्चा बड़ा खुश रहता है, जूं ही मैं शाम को घर आती हूँ ये क्रैंकी होता है, और आपको कहते हैं ये कब चुप होता है, जब मैं तिलावत चला के इसको छोड़ती हूँ ये चुप हो जाता है, फिर मैं किचन में जाके काम करती हूँ। तो ये तो अब बच्चों का नसीब है, उनको माँ कैसी मिली। और दुख की बात है आज बहुत सारे बच्चों को अच्छी माएं नहीं मिली। मत कहिए कि अच्छे बच्चे नहीं है मुसलमानों के पास, माँ अच्छी नहीं है, उसको बड़ी मसरूफ माँ मिली है, उसको बड़ी सेल्फ प्रोजेक्शन वाली माँ मिली है, उस माँ की अपनी बड़ी कमिटमेंट्स है, उसने भी कई जगह जाके सोशल वर्क करना और अपने बच्चे को रोलना है। तो अपने बच्चों की तरबियत खुद करें, जो कुरान सीखने आती हैं माएँ और जिनके बच्चे उनके साथ हैं, मैं गवाही दे सकती हूँ प्रेगनेंसी से लेकर बच्चे के पैदा होने और 8-10 दिन के बच्चों को लेके सिस्टर स्कूलों में आ जाती हैं, 2-2 साल तक वो बच्चे वहां रहते हैं, वो खुद कहती हैं इस बच्चे और पहले से बच्चों में जमीन आसमान का फर्क है। और जो यंग बच्चियों की क्लासेस जिनको 7-8-9 साल की उम्र में कुरान में जोड़े, तो मैं रश से उस क्लास को देखती हूँ। तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम के आप क्या हुआ, मूसा अपनी जवानी को पहुंच गए और इनकी नशोनुमा मुकम्मल हो गई, तो हमने इनको हुक्म और इल्म अता किया, और हम नेक लोगों को ऐसी ही सजा दिया करते हैं। हुक्म क्या है, हिकमत, और हिकमत कहते हैं बर वक्त फैसला करना, किस वक्त क्या बात करनी है, ये भी हिकमत होती है। हमें बात कब याद आती है, जब घर पहुंच जाते हैं, ये बात करनी चाहिए थी। लड़ाई के अंदर जब बात जाते हैं बाद में करते हैं कि गुस्सा आता है, ये मैंने जवाब क्यों नहीं दिया। हमारे वालिद अक्सर कहा करते थे कि जो थप्पड़ लड़ाई के बाद याद आए वो खुद को मार लो, और इट्स ट्रू। हिकमत के जब जो मौका है उस वक्त दिल लगती बात कर दो। माँ है तो बच्चों को मौके पे बात करें, बीवी है तो बात करें, उस्ताद है, अच्छा उस्ताद होता ही हुआ है, यकीन करें उस्ताद और गैर उस्ताद का फर्क ही है। उस्ताद को ये पता होता है किस वक्त उस क्या कहना है और किस वक्त चुप रहना है, कब बोलना हिकमत है तो कब चुप रहना भी हिकमत है, कब आंख का इशारा दिखाना है और कब उसको डांटना हिकमत है, ये सारी चीजें मिलती हैं। फिर कहीं बात है बदलते हुए हालात के साथ कैसे रहना है, और इल्म को इस्तेमाल करना, सही राय के साथ लेना, सही रुख पे रहना, बुरे हालात में खैर को ढूंढ लेना, ये सारी हिकमतें और अल्लाह ने मूसा को दे दी। माँ के घर में वो सारी हिकमतें सीखे, एक मोमिन माँ की गोद में पले भड़े। अब जब ये सब हो गया, नेक लोगों को जजा दी, गोया कि आप कह लीजिए कि मूसा यूसुफ अलैहिस्सलाम के लेवल पे पहुंच गया। जब यूसुफ को निकाल दिया गया मिस्र में, और मजे की बात देखिए कि मूसा अलैहिस्सलाम जब मिस्र से मदीन जा रहे हैं, अब आप तो इतनी क्विकली वो नबियों की सारी स्टोरीज को रिलेट नहीं कर पाते, लेकिन मूसा को और अगर यूसुफ को आपके सामने रख रही हूं, तो यूसुफ जो थे वो उस वक्त कनान में थे, बैतुल मकदस में, इस मुश्किल में डाले गए, भाइयों ने कुएं में डाला तो वो वहां से मिस्र चले गए, और मूसा इस वक्त मिस्र में है, उनके साथ ये सब कुछ हो रहा है। यूसुफ का दौर पहले का, मूसा का बाद में, आप अल्लाह यहां से मूसा को मदीन भेज रहा है। कैसे नबियों से हिजरतें करें, याद रखिए दुनिया में घूमे बगैर हिकमत नहीं आती, लोगों से मिले बगैर हिकमत नहीं आती। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने खूब स्ट्रांग कर दिया, अब एक ऐसा सबब बन गया कि मूसा को शहर छोड़ के जाना पड़ा। कैसे, एक रोज वो शहर में ऐसे वक्त में दाखिल हुए जबकि अहले शहर गफलत में थे, वह उन्होंने देखा कि दो आदमी लड़ रहे हैं, एक इनकी अपनी कौम का आदमी है और दूसरा उनकी दुश्मन कौम से ताल्लुक रखता है। इनकी कौम के आदमी ने दुश्मन कौम वाले के खिलाफ उसे मदद के लिए पुकारा, मूसा ने इसको एक घूंसा मारा और इसका काम तमाम कर दिया। यहां से अब आप मूसा की पर्सनैलिटी की बातें नोट करते जाएं, आगे भी बहुत सारी आएंगी कि इनमें सोशल वर्क का बहुत जज्बा था। पीछे आपको याद है सूरत कहफ में आप पढ़ चुके, वो उस्ताद को टोकते ही रह गए, इस बच्चे को क्यों मार दिया, ये कश्ती क्यों तोड़ दी, ये दीवार क्यों बनाई। लगता है ना कि मूसा गलत चीज देख के बर्दाश्त नहीं करते थे। और इधर आप देखिए कुछ लोग होते हैं ना, इधर के काम किया उधर के काम किया, जिस उसकी खिदमत उसकी, तो मूसा की दिल में खिदमत इंसानियत बहुत थी। किसी को देखा कोई मामला हो रहा, उसको बचाने लगे, कत्ले खता हुआ, वो शख्स मारा गया। ये हरकत सरजद होते ही मूसा ने कहा, ये तो शैतान की कार फरमाई है, वो सख्त दुश्मन और खुला गुमराह कौन है। फिर वो कहने लगे, आप और मैं भी ये दुआ करते हैं अपने तमाम गुनाहों को जो जानते और अनजाने में हुए उसको याद करके, रब्बी इन्नी अज़लम तु नफ्सी फ़ग़फ़िरली, ऐ रब मैंने अपने नफ्स पर जुल्म कर डाला, मेरी मगफरत फरमा दे। बस अल्लाह ने इनकी मगफरत फरमा दी, वो गफूर रहीम है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अहद किया कि मेरे रब, ये एहसान जो तूने मुझ पर किया है, इसके बाद मैं कभी मुजरिमों का मददगार नहीं बनूंगा। दूसरे रोज वो सुबह सवेरे डरते हुए हर हर तरफ से खतरा भांपते हुए शहर में जा रहे थे कि यकायक क्या देखा, वही शख्स जिसने कल उन्हें मदद के लिए पुकारा था आज फिर इसे पुकार रहा है। मूसा ने कहा, तू तो बड़ा ही बहकावा आदमी है, यानी एक सुराख से दोबारा नहीं डसेगे। उनको समझ आ गया कि शख्स है ही लड़ाका, कल किसी और से लड़ रहा था, आज किसी और से लड़ रहा है। फिर जब मूसा अलैहिस्सलाम ने इरादा किया कि दुश्मन कौम के आदमी पर हमला करें, तो वो पुकार उठा है, मूसा क्या तू आज मुझे इसी तरह कत्ल करने लगा जिस तरह कल एक शख्स को कत्ल कर चुका। तू इस मुल्क में जब्बार बनकर रहना चाहता और इस्लाह नहीं चाहता। यानी बेचारे मूसा पर टेररिस्ट होने का इल्जाम लग गया। कर किसी और की मदद रहते और वो देखिए करे कोई और भरे वाली कई वाली कैफियत हो गई। इसके बाद एक आदमी शहर के परले सिरे से दौड़ता हुआ आया और बोला, मूसा सरदारों में तेरे कत्ल के मशवरे हो रहे हैं, यहां से निकल जा, मैं तेरा खैर ख्वाह हूं। ये खबर सुनते ही मूसा अलैहिस्सलाम डरते और सहमते हुए निकल पड़े और उन्होंने दुआ की, आप और मैं भी ये दुआ करें हर तरह के फितनों के को जहन में रखकर जिससे आज उम्मत मुस्लिमा दोचार है, रब्बी नजिनी मिनल कौमि जालिमीन, ऐ मेरे रब मुझे जालिमों से बचा दे। और मिस्र से निकलकर जब मूसा अलैहिस्सलाम ने मदीन का रुख किया तो उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि मेरा रब मुझे सीधे रास्ते पर डाल देगा। यहां से अब देखिए मूसा की जिंदगी का एक कहना चाहिए कि एक लीव और टर्न हो रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम की प्लानिंग में कोई हिजरत नहीं थी, मिस्र को छोड़कर मदीन जाना नहीं था, लेकिन कत्ले खता और दूसरे की मदद के दौरान कुछ ऐसे हालात पैदा कर दिए गए कि मूसा अलैहिस्सलाम को वहां से जाना पड़ा। इससे कुछ बातें मेरे और आपके सीखने की हैं। पहली बात यह कि प्लानिंग बहुत अच्छी चीज़ है, जब तक मुसलमान वेल प्लान नहीं होंगे तरक्की नहीं करेंगे, लेकिन बाज़ दफ़ा बहुत सारी प्लानिंग ज़रूरी नहीं होती। कुछ काम अल्लाह सुबहान तआला हैप हैज़र्डली भी करवा लेते हैं, जिस तरह बदर की जंग हुई थी, तो कभी प्लानिंग ना करना हिकमत होती है। अगर मूसा को पहले से पता होता सफ़र करना है, प्लान करूँ, अच्छा शॉपिंग करूँ, सहरा में कौन से जूते चलते हैं वो ले लूँ, अच्छा कपड़े कैसे होंगे, ड्रेस कैसा होगा, खाना क्या रखूँ, तो ये मौके ना आगे आते नेकियों के जब आने लगे। तो नेकी का काम करते जाए, हालात साथ साथ बनते जाएंगे। गो विद द फ्लो, बी बोनलेस, बस अपने आप को फ्लेक्सिबल रखते हुए अल्लाह के रास्तों के काम करते जाएं। कभी कभी कुछ काम ऐसे हैं, मैं आजकल अगर आपको कहूं तो इस वक्त आपका और मेरा मुस्तकबिल ऐसा ही है, इतनी डिफरेंट ऑप्शंस हैं। रमजान के बाद क्या करना है, हर तरफ से यही मैसेज है कि रमजान के बाद हमें आपकी जरूरत है। मैं सच कह रही हूं आपको, बगैर लगी लिपटी के इधर आप लोगों की मैसेजेस हैं, उधर उधर है, कई मुल्कों से ताल्लुक है अल्लाह के हुक्म से, हर तरफ से लोग, जैसे वो मैं हस्ती हूं कि बकर ईद पे कसाब की मांग होती है ना, इस तरह रमजान और उसके बाद दीन वालों की मांग होती है। ये तो वही बात में बुलाते हैं जिनका कुरान से ताल्लुक जुड़ जाता है। बहुत सारे तो रमजान में पढ़ के कहते हैं बहुत शुक्रिया जजाक अल्लाह खैर, फिर किसी रमजान में आपको बुलाएंगे, लेकिन वो लोग जिनको कुरान की समझ आ जाती है फिर वो तो ऐसे नहीं है। तो मैं ये जब तैयारी कर रही थी तो मैं सोच रही थी कि वाकई मुझे खुद नहीं पता कल क्या होगा, हर दिन प्लान चेंज होता है, हर दिन कुछ ये वो दिस, हर मैं इसको एंजॉय करती हूँ लेकिन ये है बहुत टायरिंग। ये वो काम है कि जिसके लिए इंसान के अंदर अगर हौसला ना हो तो इंसान बर्दाश्त ना करे। तो हालात के साथ रहिए, जो होगा जैसा होगा, आपको क्या बताएं किधर होगा। मिसाल है कि आपको बच्चियों की क्लास अनाउंस की हुई है ना, हर दिन क्यों अनाउंस करते हैं कि हमें उसके लिए कितनी तैयारियां करनी है, कितना कुछ उसके लिए हमें प्लान करना है, जगह चीजें उस्ताद जगह। अब पता चला कि 10 लड़कियां आने आएंगी, हमने 10 नहीं तो 15 की तैयारी की, वहां 50 आ गई, मुश्किल होगी ना। तो बाज दफा कुछ चीजें पहले से प्लान करके काम सही होता है, लेकिन बाज दफा हालात बिल्कुल अक्सर पलट भी जाते हैं। तो नबियों की जिंदगी से अल्लाह ताला हमें दिखाता है कि देखो ऐसा नहीं, जिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना हिजरत करके गए, कोई उनको खबर थी कि वहां ये कुछ होगा, लेकिन अल्लाह ने हालात बनाते गए। तो जब कोई चीज अपने बिल्कुल बेसिक लेवल पे होती है ना, जब कोई भी काम अपने बेस पे होता है, तो उस वक्त फिर बहुत लंबी प्लानिंग की नहीं जा सकती। अल्लाह ताला खुद ही मूसा अलैहि सलाम के लिए काम करते हैं। दिल दुखा हुआ था, माँ को बताने की भी जहमत नहीं हुई, पांव जख्मी है निकल पड़े। तो बाज दफा लीडर्स को फौरी फैसले करने पड़ते हैं और इसका इख्तियार होना पड़ता है, तो इसको हम डिसऑर्गेनाइजेशन नहीं कह सकते। हाँ, जब एक चीज चल पड़ती है, कुछ साल महीने गुजर गए, चीजें फिर पहले से पता था आगे क्या होगा, वो क्या होगा, तो वो लोग बड़े खुशकिस्मत हैं जो अनप्लान चीजों के अंदर दीन के काम का हिस्सा बन जाए, उन्हीं वही दीन की ईंटें बनते हैं। यानी आपको मैं कह सकती हूँ कि अगर आप इस दौरे कुरान के बाद कोई क्लास लेते देते हैं, कोई काम करते हैं, तो आपको आज पता ही नहीं है कि आप किस चीज का हिस्सा बनने वाले हैं। आप किसी बिल्डिंग की वो ईंट बनने वाले हैं जो बुनियाद में, जो कभी नहीं खत्म होती। दीवारें बदली जाएंगी, छतें बदली जाएंगी, शीशा उतार के बदल देंगे, लेकिन बुनियादें नहीं मिटती। तो बड़े खुशकिस्मत वो लोग होते हैं जो किसी जगह दीन के काम की इब्तदा बन जाते हैं, और उसमें कुर्बानियां बहुत होती हैं। उनको फिर जान माल वक्त एफर्ट्स लगानी पड़ती हैं, और जो जितना तड़पने वाला होता है, मैंने देखा है कि अल्लाह वहां उतने बड़े काम ले लेता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये फैसला किया और चल पड़े। और साथ दुआएं याद रखिए, जब दीन का कोई काम मुश्किल लगे तो दुआ के लिए हाथ खड़े कर लें कि अल्लाह वो जो अपनी कोशिशों से नहीं पा सक रही, वो अब मेरे मैं तुझसे दुआओं के जरिए लूंगी। अब देखिए मूसा को क्या मिलता है, बहुत ही खूबसूरत तरीके से उनकी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। वलम तवज्जह तिलका मदयन क़ाला सा रब्बी यहदियनी सवा सबील। मिस्र से निकल जब मूसा ने मदीन का रुख किया, तो उन्होंने कहा उम्मीद है कि मेरा रब मुझे ठीक रास्ते पर लगा देगा। लिख लें, पॉजिटिव एटीट्यूड, बी पॉजिटिव। ये मैं ब्लड का ग्रुप नहीं बता रही, बी पॉजिटिव ब्लड का ग्रुप, आपको एटीट्यूड बता रही। द मुस्लिम एंड द मोमिन बिहेवियर क्या है, पॉजिटिव रहे। इतने मुश्किल, आप जरा सोचिए, कत्ल का इल्जाम, मुल्क से डिपोर्टेशन के ऑर्डर, माँ पास नहीं, बहन नहीं, भाई नहीं, कुछ नहीं, कपड़े हैं नहीं, खाना नहीं, पेट में भूख है, और क्या कह रहे हैं कि अल्लाह मुझे तुझसे उम्मीदें बड़ी अच्छी हैं। मोमिन के सिवा ये किसी को नसीब नहीं होता। कोई हम जैसा होता ना, दुखड़े रो रहा होता, हाय मेरा नसीब, हाय मैं मर गया, क्यों मैंने उसकी मदद की, आज के बाद नेकी करूंगा ही कोई नहीं, इस कुरान ने मुझे क्या दिया। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला। मुश्किल से मुश्किल हालात में उम्मीद रखें, जितनी रात गहरी होगी उतनी सुबह करीब है। जब सुबह सूरज निकलना होता है, उससे पहले एकदम स्याही छा जाती है। तो कभी भी अपनी जिंदगी के किसी मामले में घबराए नहीं। और जब वो मदीन के कुएं पर पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि बहुत से लोग अपने जानवरों को पानी पिला रहे हैं, और इनसे अलग तरफ एक तरफ दो औरतें अपने जानवरों को रोक रही हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने इन औरतों से पूछा, तुम्हें क्या परेशानी है? उन्होंने कहा, हम अपने जानवरों को पानी नहीं पिला सकती जब तक कि ये चरवाहे अपने जानवर ना निकाल लेकर जाएं। यानी कि हम मर्दों में नहीं घुसती, मजबूरन घर से जॉब के लिए निकली तो है, लेकिन हमें अपना औरतपन अजीज है। निकली क्यों है? क्योंकि हमारे वालिद एक बूढ़े आदमी हैं। ये सुनकर मूसा अलैहिस्सलाम ने इनके जानवरों को पानी पिला दिया। है ना सोशल वर्कर, है ना लोगों की खिदमत का जज्बा उनके दिल में। फिर एक साय की जगह पर आ बैठे और बोले, आप और मैं भी ये दुआ करते हैं, अपनी सारी जरूरतें जो इस वक्त आपको अल्लाह से है ना, उनको सामने रखते हुए ये दुआ मांगिएगा। रब्बी इन्नी लिमा अनजलता इलैया मिन खैरिन फकीर। परवरदिगार, जो खैर भी तू मुझ पर नाजिल कर दे, मैं उसका मोहताज हूं। यानी मुझे क्या नहीं चाहिए। और उलमाए कराम कहते हैं, जब बंदे के हालात इतने तंग हो कि समझ ना आए कि क्या मांगू और क्या ना मांगू, क्या छोड़ू क्या ना मांगू, तो उस वक्त ये मांगे। और हकीकत है कि बाज दफा जिंदगी इतने राउंड अबाउट पे घूम रही होती है, रास्ता ही नहीं मिलता। अब गाड़ी गोल घुमा घुमा के इधर से उधर उधर से निकलते, करें तो क्या करें, किधर जाऊं क्या करूं, तो फिर तो जुबान पे दुआ के लफ्ज भी नहीं आते। बाज दफा खौफ की वजह से दुआ मांगना भूल जाता है, बाज दफा गम की शिद्दत की वजह से दुआ नहीं मांगी जाती। ये दुआ याद कर लें, रब्बी इन्नी लिमा अंजलत इलैया मिन खैरिन फकीर। अल्लाह तू मुझे जो भी देगा चाहिए, क्या चाहिए, भूख भी लगी हुई है, थकन भी है, घर मेरे पास कोई नहीं, जगह मेरी कोई नहीं, ठिकाना नहीं, जिस मुल्क में आए उसका वीजा कोई नहीं है, मेरी बीवी नहीं है, बच्चे नहीं है, अल्लाह मेरे मुझे तो तुझसे बहुत कुछ चाहिए। अब इस दुआ की जरा बरकतें तो देखिए। कुछ देर ना गुजरी थी कि इन दोनों औरतों में से एक शर्मो हया के साथ चलती हुई इसके पास आई और कहने लगी, मेरे वालिद आपको बुला रहे हैं। शर्मो हया पे गौर कीजिएगा, औरत की फितरत में गुंदी हुई चीज है शर्मो हया। और शर्मो हया के साथ आती हुई एक औरत काम की बात करके बाप का मैसेज देकर चल पड़ी क्यों बुला रहे हैं मेरे वालिद आपको, ताकि आपने हमारे लिए हमारे जानवरों को जो पानी पिलाया इसका अजर वो आपको दें, इसकी उजरत वो आपको दें। मूसा अलैहिस्सलाम जब उनके पास पहुंचे और अपना सारा किस्सा सुना दिया तो उस दोनों ने कहा, कुछ खौफ ना कर, अब तुम जालिम लोगों से बच निकले हो। यहां तक थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम हर चीज के जरूरतमंद थे। अल्लाह सुब्हान तआला ने इनकी जिंदगी का नया बाब शुरू कर दिया। कहाँ से निकले थे? सफर करके। और अमूमन इंसान जब सफर से आता है तो थका होता है, आते ही हम क्या कहते हैं, कौन है जो मेरी टांगे दबाएगा, कौन है जो मुझे चाय का कप देगा। ये तो आप रमजान की हालत में आके रोजा रख के जा रही है ना, जब अब रमजान के बाद आके इंशाल्लाह जाएंगी तो घर जाना है, कौन मुझे खाना खिलाएगा, मेरे लिए क्या पकाया। फितरी बात, इंसान जब एक बहुत ज्यादा माहौल से गुजरता है तो उसको भूख लगती है। लेकिन मूसा देखिए, खिदमत कराने की बजाय कहते हैं बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। फिर दूसरी बात देखिए कि औरतें घर से बाहर निकली अपनी बकरियों को चराने के लिए, वो भी एक उनका प्रोफेशन था, बकरी उस दौर की कमोडिटी थी जिसका दूध बेचकर लोग कमाते थे। तो यहां से एक बात पता चलती है कि क्या औरत जॉब कर सकती है, कैन औरत, कैन अ वुमेन वर्क और वट एवर। तो पहली बात जो हमने पहले देख ली थी सूरत निसा में कि अल्लाह ने औरत पे माश की जिम्मेदारी नहीं डाली, दिस इज अ गिफ्ट फ्रॉम अल्लाह सुब्हान तआला कि औरत को अल्लाह ने मुकल्लफ नहीं बनाया। लेकिन अगर मजबूरी है, कोई ऐसे हालात हैं, अब इसमें क्या था, बाप बूढ़ा है और बास कहते हैं कि नाबीना भी थे भाई, है कोई नहीं, अब बकरियों को क्या करें, घर में रखेंगे, खाना मांगेंगी, पीना मांगेंगी। तो ऐसी सूरत में अगर औरत हया के दायरे में रहकर मजबूरन काम करे तो इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। फिर दूसरी बात है कि हजरत मूसा से बात की उस औरत ने, एक औरत मर्द से बात कर सकती है हया के अंदाज में, लट मार अंदाज भी नहीं है बिल्कुल, बहुत बुरी बात भी नहीं है, तरीके से बेतकल्लुफ होने की कोशिश नहीं की, कोई बातें नहीं की, फिर कब मिलोगी। आप देखिए इन्हीं मंजरों को फिल्मों ने क्या शहरी बाबू और वो हीरोइने और पानी भरने और क्या कुछ के साथ पेश करके रख दिया। लेकिन नबियों की सूरत में हमें ये बात पता चलती है कि मर्द बेतकल्लुफ औरतों से होते ही नहीं थे। फिर आप देखिए कि हजरत मूसा ने अपनी नजरों को बचा के रखा, और जो नजरों की खयानत ना करे वो बामानत ही तो होगा। फिर इसी तरह से आप देखिए कि रिवायात में आता है हजरत उमर का एक बड़ा खूबसूरत कौल है कि वो औरत हया के साथ कैसे आई, कि वो औरत जब मूसा को घर लेके जा रही थी तो घर का रास्ता उस औरत को पता था, तो मूसा के आगे चलने लगी तो मूसा ने कहा तो आगे नहीं चल, तो आगे चलेगी तो मैं तेरी मेरी नजर तुझ पे उठेगी। कहा फिर तुझे घर का रास्ता कैसे बताऊंगी, कहा पीछे चल, हाथ में कंकर ले ले, रॉक छोटी, और जिधर जिधर जाने ना अपने से आगे वो रॉक उधर डालती जा, मैं उधर मुड़ता जाऊंगा। हया देखिए, जब आप ये कह दें कि नहीं, एक ऑफिस में बैठ के और एक ही टेबल पे बैठे बगैर तो ऑफिस में जॉब वर्क होता ही नहीं, और फिर उसमें बॉस और सेक्रेटरी, और फिर चाय भी पीनी लाजमी और कॉफी भी जरूरी और डिस्कशन एंड डायलॉग भी जरूरी है और मीटिंग्स में जाके उनके साथ भी शेक हैंड भी जरूरी है, तो फिर आप जो मर्जी कर ले। इस्लाम फिर इस तरह के खेल की इजाजत नहीं देता एक इंसान को कि इस तरह से अपने आप को लेकर चले। और आप देखिए कि हया का बैरियर कायम रखा मर्द के साथ बात करते हुए, तो आवाज तो औरत नहीं अपनी बदल सकती लेकिन अंदाज बदल सकती है, और मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको गलत नजरों से नहीं देखा। खैर अब क्या हुआ कि घर आए, बाप के साथ सारी कहानी खोली, बाप समझदार थे, उन्होंने मान लिया, कहने लगे डोंट वरी, अब इधर हो। मिस्र में किसी भी मुल्क की जब हद से निकल जाते हैं तो आप उसके केस या कोई भी आपके मुकदमे होते हैं उसे निकल गए, कहा कि तुम उसे निकल गए हो इसलिए तुम डोंट वरी कि अब तुम हमारी पनाह में हो। इस तरह अल्लाह तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम के लिए घर का भी इंतजाम कर दिया। अब क्या हुआ, चलें थोड़ा सा शेल्टर मिल गया और सफर की थोड़ी बहुत थकन खत्म हुई, अब आगे क्या हुआ, नाते समय कितनी बातें सिखा दी। काल तहदा हुमा या बतिस्ताजिर हु, इन दोनों औरतों में से एक ने अपने बाप से कहा। अब देखिए पीछे हमने बहन का किरदार देखा और माँ का देखा, यहां हम बेटी का किरदार देख रहे हैं और आगे जाके हम बीवी का किरदार देखेंगे। दुआ कीजिए इन चार रूप में आज की औरत कामयाब हो जाए ताकि दुनिया को खैर दे सके। क्या कह रही है बेटी, कहने लगी अब्बा जान आप इसको नौकर रख लीजिए, बेहतरीन आदमी जिसे आप मुलाजिम रखें वही हो सकता है जो मजबूत भी हो और अमानतदार भी हो। मजबूत कैसे, समझी कि अकेले मूसा ने वो बड़ा सा पत्थर उठा के कुएं से हटा दिया था जिसको कई लोग ना हटा सके, तो स्ट्रांग है। इससे पता चलता है कि मर्द की खूबी है कि वो स्ट्रांग हो, ये ना हो कि चूहा मारना तो बेगम को बुला ले और वो लाल बेग है तो बेगम आइए जरा आप इसको मार जाइए, चोर आ जाए तो मर्द सबसे पहले बाथरूम में घुस जाए या बेड के नीचे घुस जाए। तो मर्दों को स्ट्रांग रखे बाप, के हम अपने मर्दों को कैसे स्ट्रांग करें, अपने बेटों को स्ट्रांग करें। उन्होंने जो बनना था बन गए, लेकिन अपने बच्चों को कांच की गुड़िया ना बनाएं, लड़कों को खास तौर पे स्ट्रांग करें, ब्रेवरी सिखाएं। अल्लाह के नबी ने फरमाया अपने बेटों को घुड़सवारी सिखाओ, उनको नेजा अंदाजी सिखाओ, स्विमिंग सिखाओ, उनके अंदर मजबूती होनी चाहिए। और दूसरी चीज है कि वो अमानतदार है। कैसे अमानतदार है कि काम किया पैसे ही नहीं मांगे, बेजरर है। दूसरी बात है कि इन औरतों पर नजर डाली भी नहीं, तो गोया कि इस तरह से उनको बता दिया गया कि ये अच्छा शख्स है। इसके बाप ने मूसा से कहा, मैं चाहता हूं कि अपनी इन दो बेटियों में से एक का निकाह आपके साथ कर दूं। क्या पता चला, बेटी का बाप भी किसी को निकाह का पैगाम दे सकता है। हम हो तौबा करो, कहेंगे सारी जिंदगी ताने सुनाने, तुझे खुद ही आके दे गए। आज कितने लड़कियों वाले हैं जिनके दिलों में ख्वाहिश भी होती है किसी जगह रिश्ता होने की, क्यों नहीं करते बात? क्या नहीं बुरा लगता? क्यों बुरा लगता है भाई, इस्लाम तो आपको इसमें बुरा नहीं बनाता। किसी को करना होगा तो कर लेगा, नहीं करेगा तो ना सही। अच्छा आप कहते हैं फिर फी जमाना बुरा, तो मैं आपको एक टोटका बता देती हूँ। टोटका तो नहीं है, खैर इस्लामी चीज है। आप देखिए दुआ इस्तखारा है ना, हम उसमें दुआ करते हैं कि अल्लाहुम्मा इन कुंता तआलम अन्ना हाज़ल अमरु खैरु ली फी दीनी व माशी वाकिबत अमरी, यानी अब तवील कहने की बजाय खुलासा बताती हूँ कि अल्लाह अगर ये चीज मेरे हक में बेहतर है दीन दुनिया और मेरी मईशत माशरत में, तो इसको मेरे लिए आसान कर दे, और अगर ये बेहतर नहीं है तो फिर इसको मुझसे दूर कर दे, मुझे इससे दूर कर, इससे बेहतर ले आ। तो आप में से जिसके दिल में अपनी बेटी या किसी भी किसी के लिए रिश्ते की ख्वाहिश और आप कह नहीं पा रहे, आप उसकी नियत से इस्तखारा शुरू कर दें। उसी में आपने अल्लाह को कह दिया कि अगर ये बेहतर नहीं है तो दूसरा ले आ, और अगर ये बेहतर है खुद अल्लाह उनके दिल में डाल देगा। तो बाज दफा हिकमत के साथ हम अल्लाह से भी बहुत सारी चीजें मांग लेते हैं जो कि हमें दूसरी तरह से मांगनी नहीं आती। और बाप ने बेटी के निकाह की शर्त की, अब आप बताइए मूसा को और क्या चाहिए था? कहा अच्छा ठीक है कोई हर्ज नहीं, बशर्ते कि तुम 8 साल तक मेरे यहां मुलाजमत करो। यहां से पता चला कि निकाह के वक्त शर्त लगाई जा सकती है लेकिन लगानी नहीं चाहिए, क्योंकि जू ही शर्त टूटी निकाह टूट जाएगा। लेकिन बाप की मजबूरी थी, उन्होंने कहा 8 साल मेरे साथ रहो, और अगर 10 साल पूरे कर दो तो ये तुम्हारी मर्जी है, मैं तुम पर सख्ती नहीं करना चाहता। सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस्सालिहीन, तुम इंशाअल्लाह मुझे नेक आदमी पाओगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ये बात मेरे और आपके दरमियान तय हो गई, ये है निकाह, बेटी के बाप और लड़के के बीच में होता है। हम कहते हैं ना लड़की लड़के का निकाह होता है, तो काट दीजिए इस जुमले को, निकाह लड़की के बाप और लड़के यानी दूल्हा ग्रूम और उस ब्राइड के बाप के बीच में होता है। लड़की के साथ होता होता तो फिर इतने लंबे चौड़े मामले की जरूरत नहीं थी। बहरहाल मूसा ने रिश्ता कबूल किया, निकाह हो गया। इन दोनों मुद्दतों में जो भी मैं पूरी कर दूं इसके बाद फिर आप मुझ पर कोई ज्यादती ना कीजिए, यानी ठीक है मैं 8 साल आपके साथ रहूं या 10 साल रह लूं, ये मेरी मर्जी है। हाँ जो कुछ कौलो इकरार हम कर रहे हैं अल्लाह इस पर निगेबान है, क्योंकि उस वक्त कोई गवाह नहीं मिले तो अल्लाह को वकील बना लिया। अब इसमें देखिए कितनी बातें हैं मेरे और आपके लिए, लंबी बात हो जाएगी, अल्लाह ना करे कि हमारा वक्त कम हो जाए, लेकिन हकीकत है कि इस्लाम ऐसी ही शादियों का कायल था। मूसा अलैहिस्सलाम घर से निकले भूखे प्यासे खाली हाथ, रोटी कपड़ा और मकान तीनों मिल गया, बीवी भी मिल गई। अल्लाह से दुआ क्या की थी, इन्नी लिमा अंजलत इलैया मिन खैरिन फकीर, दुआ कबूल कैसी, बाहया औरत मिल गई। याद रखिए आप अपने बच्चों के लिए अगर ऐसी बाहया लड़कियां लेके आते हैं जिनके दिल में दीन और इस्लाम की मोहब्बत है, आप कह लीजिए कि आपने अपने घर और अपने खानदान के लिए खैर की बात कर दी। क्योंकि जब एक बच्ची में हया होगी ना तो वो फिर आपकी नस्लों में भी ये लेकर आएगी। किस तरह हमने देखा कि अपनी जात की तरफ तवज्जो दिलाने की बजाय उसने बात पे तवज्जो दी, मूसा से कोई उसने राह रस्म नहीं रखे, फासला रखते हुए बात की। और आप देखिए कि बाज दफा तो लड़कियों के अंदाज ऐसे दिल फेंक होते हैं कि शरीफ मर्द घबराने लगते हैं कि अल्लाह की पनाह इनसे हमें कोई बचा ले, पजल हो जाते हैं घबरा जाते हैं। तो याद रखिए हिजाब हो के निकाब हो दोनों के बीच में हया मुकर्रर है, बदतमीज भी नहीं होना और बहुत ज्यादा फैल भी नहीं जाना। फिर दूसरी बात आप देखिए कि यहां हमें जो बात पता चली वो क्या है कि इतने आराम से शादी हो गई। आप अपने ऊपर लें, अगर आपकी कोई बेटी है और जो लड़कियां खुद अनमेरिड हैं जरा वो अपने ऊपर लें, एक लड़का जिस पे कत्ल का इल्जाम है किसी मुल्क से डिपोर्टेड है, जॉब उसकी कोई नहीं, डिग्री उसके पास कोई नहीं, गाड़ी वो नहीं लेकर आया, बैंक स्लिप उसकी कोई नहीं, कोई जॉब नहीं, क्या देखा हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने? आज हम अपनी बच्चियों को बूढ़ा कर देते हैं सिर्फ अपनी लिस्टों को मैच करते हुए, और हम अपने बेटों को गुना पे रहना माइल कर देते हैं लेकिन हमारी वो लिस्ट नहीं मैच हो रही जो किसी लड़की के अंदर हमने खूबियों की देखनी है, वो परी भी हो वो औरत भी हो, हाउ इज इट पॉसिबल? वो हूर भी हो और वो इन लड़की भी हो, हाउ इज इट पॉसिबल? और वो हो भी 18 साल की और काम वो 40 ईयर्स वाले करे, हाउ इज इट पॉसिबल? नामुमकिन किस्म के हमने ऐसे मेयार बना दिए जिसने आज हमारे बच्चे बच्चियों को सब्र पे डाल दिया या गुना पे डाल दिया। दोनों बातों को जाके सोच लें, कितने मां बाप है जिन्होंने इस तरह के मेयार रखे। और आज भी मैंने देखा है वेस्ट में पलने वाले लड़के और लड़कियां, दे आर वेरी मच रियलिस्टिक। ऐसी लड़कियां वो कहती हैं हमें कोई नहीं चाहिए दौलत, हमारे माँ बाप नहीं करते हमें, ठीक है एक अर्ली स्टेज पे लड़का है उसका कैरियर बंद है, खुद ही आ जाएगी दौलत 4-10 साल में जब जॉब लगेगी प्रैक्टिस शुरू होगी, अब माँ बाप कहते नहीं दौलत हो। उधर बाप क्या चाहता है, लड़का हो कोई 20-25 साल का, दौलत उसकी मेरे जितनी हो जो 60 साल की उम्र में पूरी हुई। हर एक जानता है कैरियर के शुरू में दिन हाथ तंग होता है। आप में जो वो डॉक्टर्स की बीवी है, आप अपना को एक्सपीरियंस शेयर कर लीजिए, डॉक्टर्स की इब्तदाई जिंदगी इंतहाई कसम पुरसी की होती है। ऐसी एक सिस्टर की बात याद आती है कि जब शादी हुई उनकी तो वो कहती थी कि हम एक कमरे के फ्लैट में मियां बीवी रहे, बच्ची पैदा हुई तो गम पड़ गया कि इसका दूध कैसे लेंगे, और इस वक्त वो अपने शहर के मेरा ख्याल है कि सबसे बड़े डॉक्टर होंगे करोड़पति लोगों में से। सब पलट के आ गया, सब्र किया, हो गया। आप शादी के वक्त दौलत भी चाहते हैं, गाड़ी भी चाहते हैं, बंगला भी चाहते हैं, तो फिर वैसे ही लड़के मिलेंगे। फिर आप जब लड़के देखते हैं कि ये सब जरूरी है और शादी जरूरी है, फिर वो इधर उधर से गलत मीन से दौलत कमाएंगे। तो शादियों को आसान करने की जरूरत है। किस तरीके से ये मामला हुआ, आज हमने शादियों को इतना महंगा कर दिया, इतना डिलेट कर दिया कि अल्लाह की बना। और जब फिर शादियों पर डिस्प्ले होते हैं और आप तो खुशी में करते हैं कि वी हैव दिस सो वी नीड टू डू दिस, तो जिनके पास नहीं होता वो क्या करें। अगली सूरत में हम पढ़ेंगे सूरत अनकबूत का पूरा टॉपिक ही शो ऑफ है, रियाकारी, दिखावे, शो ऑफ, तबर्रुज, कहां तुम अपने आप को दूसरों के अंदर फिट करते हो। तो आज उम्मते मुस्लिमा को इस पे सोचने की बात है। और फिर इसमें एक और बात पता चली कि घर दामाद भी बनाया जा सकता है लड़की के मियाँ को, कोई बुरी बात नहीं। हम कहते हैं लो यानी लड़की का मियाँ आपके घर में रहा, घर दामाद लव सबको ही पता क्या होता है। हजरत शोएब की मजबूरी थी, बेटा नहीं, अब कल तक मजबूरी में बेटियों से काम कराया, जब दामाद मिल गया, हलाल रिश्ता घर में आ गया, तो कहा भाई आप बकरियां चराएंगे, मैं अब लड़कियों से और काम नहीं कराऊंगा। पता चला किसी मजबूरी में करा लिया, लेकिन जब मजबूरी दूर हुई तो उसको छोड़ दिया। तो उन्होंने कहा कि कोई हर्ज की बात नहीं है, ठीक है। और फिर इसी तरह से आप देखिए कि शर्त रखी, और हजरत मूसा भी कितने अच्छे दामाद दिख रहे हैं कि ये नहीं कहा अच्छा एक दफा शादी कर लो फिर पूछूंगा जब दामाद बनूंगा। आज लोग उतना अल्लाह से नहीं डरते जितना दामादों से डरते हैं, अल्लाह की बना, दामाद का नाम सुनकर खौफ आने लगता है। बहू बेचारी ससुराल की खिदमत करे और ससुराल सारा दामाद की खिदमत करे, कितना उलट में आ रहा है। लड़की ससुराल में जाती है तो उसका मुकाम देखिए, और लड़का अपने ससुराल में जाए तो क्या होता है। किसी की लड़की आपके घर में आई तो आप खिदमत कराएं, आपका बेटा ससुराल से हो क्या है तो मुझे बताओ क्या खिदमत की, अच्छी तरह पूछा तुम्हें, रखा नहीं। तो ये डबल स्टैंडर्ड्स हमें खत्म करने पड़ेंगे, और जरा कोई जाके ससुराल वालों की खिदमत तो कर रहा है, बेचारा लड़का कहेंगे तुम जन मुरीद हो गए, तुम तो ससुराल क्या तो बिक गए, तुम्हें तो कुछ खिला दिया और पिला दिया और जादू चल गया तुम पर, ऐसी बात नहीं है, तुम इलेक्ट्रिशियन हो, तुम उनके प्लम्बर हो, ये भी जैसे आपका बेटा है वैसे आपका दामाद है। याद रखिए इन दोनों रिश्तों में कोई फर्क नहीं होती। अगर माया चाहती हैं कि उनकी बहुएं उनकी खिदमत करें, तो उनको अपने बेटों को ये सबक देना चाहिए कि आप भी अपने ससुराल वालों की खिदमत करें अगर उनको जरूरत हो। लेकिन आज जब हमने नबियों का अखलाक छोड़ा तो यकीन करें हमारे घरों का हाल बदल गया। आज हमारे लड़कों का हाल क्या है कि मैके वालों से तो डांट खाते हैं और ससुराल वालों में जाकर डांट देते हैं और गुर्राते हैं कि लोगों को पता नहीं ये नहीं वो। तो बहरहाल इन सारी चीजों को बदलने की जरूरत है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमारी इस्लाह फरमा दे, वरना बात नहीं बनेगी। अगली आयतों में आप देखिए मूसा के 10 साल पूरे हो गए, अच्छे दामाद होने के नाते 8 की बजाय 10 साल पूरे कर दिए, और अब जाने लगे। यहां फिर कान खोल के सोच लीजिए कि लड़का यानी मर्द अपनी बीवी को जहां चाहे ले जा सकता है, कोई ससुराल वाला ये शर्त नहीं लगा सकता कि आप इधर ही रहेंगे, आप हमारी बेटी को छोड़ेंगे नहीं। बाज दफा आप अपने एक ही शहर में शादी करते हैं, कुछ जॉब बनती है, 2-4 साल में चली जाती हैं लड़कियां, तो इतनी शर्तें लगाना कि शादी हो ही ना, वे अल्लाह पे ट्रस्ट कीजिए। उनके बाप ने बेटी की शादी की, घर में रखा, 10 साल रखा, लेकिन वो वक्त आ गया, कहा खत्म, अब तो हमें जाना होगा, अब अगला दौर है, तीसरा दौर है मूसा की जिंदगी का। आयत नंबर 29 से, फलम मकदा मूसा लजल, जब मूसा अलैहिस्सलाम ने मुद्दत पूरी कर दी और वह अपने अहलो याल को लेकर निकल चले, तो तूर की जानिब इनको एक आंख नजर आई। ये वक्त है, लिख लीजिए कि मूसा को नबूवत मिल रही है, रिसालत नहीं, नबूवत मिल रही है। अभी तक मूसा एक ऑर्डनरी इंसान थे, मिस्र से निकले थे कत्ल के मुकदमे में, या नोट कीजिए कत्ल तक हो चुका हाथ से, चाहे कत्ल खता था, अल्लाह उसके बाद नबूवत दे रहा। तो आप किसी गुनाह में अगर शिकार हैं तो क्या बड़ी बात है कल अल्लाह आपको कुरान का टीचर लगा दे, कल अल्लाह आपको कुरान के वॉलंटियर बना दे। तो कभी आपके गुनाह या आपकी जिंदगी की कोई स्याही आपको नेकी करने से ना रोके। शैतान का एक बड़ा हाथ होता है। हम होते कहते 900 चूहे खा के बिल्ली हज को जा रही है, देखो देखो ये कत्ल करने के बाद अब क्या करें। तो कभी किसी को उसके गुनाह की याद ना दिलाएं, खुद भी गुनाह कर चुके हैं, अल्लाह से क्या अब अल्लाह मौका दे कि अगली जिंदगी में इन गुनाहों को धो लूं। फिर दूसरी बात देखिए कि मूसा चाहते तो 8 साल बाद भी आ जाते, लेकिन उन्होंने एहसान का मामला किया 10 का, उसका फायदा आपको पता क्या हुआ? अगर 8 साल बाद वापस चले जाते मिस्र में तो जेल में होते, क्योंकि अभी मुकदमे की मुद्दत थी। 10 साल बाद गए तो 10 साल में मिस्र के कानून के मुताबिक कत्ल के मुकदमे डिलीट कर दिए जाते थे, क्या मुजरिम को छोड़ दो। एहसान किसी पे किया, ससुराल पे, फायदा अपने आप को हुआ। तो याद रखिए नेकी पलट के आती है। आज आप किसी के साथ नेकी करेंगे आपको फायदा होगा। और मूसा अलैहिस्सलाम अब अपनी बीवी और 7 बच्चे उनको लेकर वापस जा रहे हैं कि आई नीड टू गो बैक। तो माँ बाप इतनी सख्तियां ना करें अपने बच्चों पे और अपनी बेटियों के, इतने लाड ना देखें कि ये इधर नहीं जा सकते, ये उधर नहीं जा सकते। और ये भी पता चला कि वक्त एक सा नहीं रहता, हालात बदल जाते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम वहां से निकले और दूर से आग दिखी, इसको पढ़ते हैं फिर देखेंगे। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने मुद्दत पूरी कर दी और अपने अहलोयाल को लेकर निकल चले तो तूर की जानिब इनको एक आग नजर आई। उन्होंने अपने घर वालों से कहा, ठहरो, मैंने एक आग देखी है, शायद मैं वहां से कोई खबर ले आऊं या उस आग से कोई अंगारा ही ले आऊं, कोई अंगारा ही उठाकर लाऊं जिससे तुम ताप सको। कौन है शोहर? कवाम है, एक जिम्मेदार शोहर अपने घर वालों की जरूरियात का एहतमाम मर्द करता है। मूसा ने बीवी को नहीं कहा कि मैं जरा यहां बैठता हूं, जरा आप जाके थोड़े से कोयले ले आइए और मुझे से किए। तो बीवियों को भी इतना बेवकूफ नहीं बनना चाहिए कि मर्दों की इस तरह की बातें मान ले, जरूरत की बात और होती है, लेकिन उनको रिलैक्स नहीं कर देना चाहिए। फिर उसके बाद क्या पता चला कि मूसा अपने बीवी बच्चों के साथ थे जब नबूवत मिली। अल्लाह के दीन के काम करने के लिए खुदा ना खास्ता हम ये कभी इंतजार ना करें कि हमारे घर टूटे, अकेले हों, फिर अल्लाह का काम करें। और बच्चे हमें छोड़ छाड़ के चले जाएं तो हम रोते हुए आंसू पोंछते हुए किसी मदरसे में आके बैठ जाएं। इन्हीं बीवियों और इन्हीं शौहरों और इन्हीं बच्चों के साथ दीन के काम करने हैं, इन्हीं को गोदों में लेके आना है, इन्हीं बड़ों को साथ लाना है। और इस तरह से बात है, आप देखिए कि मूसा अलैहिस्सलाम आग लेने जा रहे हैं, हिदायत देने वाले बनकर आ रहे हैं। बस जब इंसान कुछ लेने आता है और जब उस कमरे से निकलता है ना तो देने वाला बन चुका होता है। जैसे आज आप में से बहुत सारे कुरान लेने आए हैं ना, दौरे कुरान के लिए आए, आप लेने वाले हैं, लेकिन इंशाल्लाह जब आप इस काम पे जम गए तो कुछ सालों में आप देने वाले बन के पूरे शहर में फैल जाएंगे। तो हमेशा कह के अल्लाह मुझे देने वाला बना, लेकिन देने से पहले लेना लाजमी है। जब कुरान सीखे बगैर, पूरी तरह सारे रूल्स और रेगुलेशन से गुजरे बगैर हम लोगों को सिखाना शुरू कर देते हैं और पढ़ाना और कच्चा पक्का इल्म देते हैं, अल्लाह की बना। आज उम्मत मुस्लिम का एक ये भी बहुत बड़ा नासूर है, वो लोग दूसरों को हिदायत की तरफ बुलाते हैं जिनको खुद अभी हिदायत की जरूरत है, वो लोग दीन सिखा रहे हैं जिनको अभी खुद सीखने की जरूरत है। कच्चे पक्के इल्म से कभी खैर नहीं फैलती। मूसा अलैहिस्सलाम 10 साल में वहां पूरी तरबियत पा चुके थे कि जो नबूवत के कामों में मुआविन थी उनके तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि आज का दिन मेरी जिंदगी का इतना अहम दिन है। आगे सरेरा, जैसे आप भी किसी के कहने पर सरेरा आज आगे, आपको नहीं पता आज का आपका आना आपकी जिंदगी का रुख चेंज करने का दिन बन गया। तो लिहाजा मूसा अलैहिस्सलाम जब वहां से निकले अल्लाह ताला ने उनको नबूवत दी, कैसे अगला मंजर देखिएगा। जब वहां पर पहुंचे तो वादी के दाएं किनारे पर मुबारक खित्ते में एक दरख्त से पुकारा गया, ए मूसा मैं ही अल्लाह हूँ सारे जहान वालों का मालिक। और हुक्म दिया गया कि फेंक दे अपनी लाठी को। जू ही के मूसा ने देखा कि वो लाठी सांप की तरह बल खाती हुई दिखती है तो पीठ फेर कर भागे और उन्होंने मुड़कर भी ना देखा। इरशाद व मूसा, पलट और खौफ न करो, तुम बिल्कुल महफूज हो, अपना हाथ गिरेबान में डालो और चमकता हुआ निकलेगा बगैर किसी तकलीफ के, और खौफ से बचने के लिए अपना बाजू भेज लीजिए। ये दो निशानियां हैं तेरे रब की तरफ से फिरौन और उसके दरबारियों के सामने पेश करने के लिए, वो बड़े ही नाफरमान लोग थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरे रब, मैं तो इनका एक आदमी कत्ल कर चुका हूँ, क्या पता चला 10 साल हो गए लेकिन अभी तक उस गुना या उस कत्ल के खौफ से नहीं निकल सके, डरता हूँ कि वो मुझे मार डालेंगे, और मेरा भाई हारून मुझसे ज्यादा जुबान आवर है और वो उसको मुझसे ज्यादा जुबान आवर है, यानी अच्छी बात कर सकते हैं, उन्हें मेरे साथ मददगार के तौर पर भेज दीजिए ताकि वो मेरी तायद करें, मुझे अंदेशा है कि वो लोग मुझे छुटलाएंगे। फरमाया, हम तेरे भाई के जरिए से तेरा हाथ मजबूत करेंगे और तुम दोनों को ऐसी सल्तनत बख्शेंगे कि वो तुम्हारा कुछ भी ना बिगाड़ सकेंगे, اور ہماری نشانیوں کے زور سے غلبہ تمہارا اور تمہارے پیروکاروں کا ہی ہوگا۔ یہاں پہ اگلا منظر پورا ہوا، یہاں پھر بہت ساری باتیں سیکھنے کی۔ پہلی بات دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جب چنا دین کی خدمت کرنے کے لیے تو ماضی کی کچھ غلطیاں یاد آ گئیں، تو کہنے لگے اللہ تعالیٰ میں کیسے ان کو جا کے بتاؤں، میرے ہاتھوں سے تو ایک قتل ہو گیا۔ تو اللہ نے کہا ڈونٹ وری، کیا پتا چلا کہ دین کی خدمت کرنے والوں کو گلٹ میں نہیں پڑنا کہ ہم بہت گناہگار ہیں، ہم غلط تو کام کر چکے، بلکہ میں آپ کو اپنی آبزرویشن سے بتاؤں گی کہ جس نے جتنی گناہوں کی زندگی گزاری ہوتی ہے نا، پھر وہ اتنا دین کا کام زیادہ دل سے کرتے ہیں۔ گناہ کا گلٹ ہوتا ہے، اس گلٹ سے آپ سمجھتے ہیں کہ دوسروں کے کیا جذبات ہیں۔ مثلا آپ دیکھیے، ایک سسٹر ہے جو دیندار گھر میں پیدا ہوئی، کسی عالم کے گھر میں اللہ نے کسی بہت نیک انسان کی بیٹی بنایا، نہ گناہ چکھا، نہ گانے سنے، نہ فلمیں دیکھی، نہ ناچ گانے کیے، جو بھی فی زمانہ خرابیاں تھی انہوں نے تو کی نہیں۔ کل وہ تبلیغ کرنے بیٹھ گئیں، کیا وہ لوگوں کو کے جذبات سمجھ سکتی ہیں؟ گانا سن کے دل کو اچھا کتنا لگتا ہے، اور وہ میوزک سن کے جو پاؤں تھرکتے ہیں اور جو کانوں میں باتیں آتی ہیں، ان کو پتا کہ میوزک سننے والوں کے جذبات کیا ہیں؟ وہ کبھی اس طرح بات ہی نہیں کر سکیں گی، وہ کبھی بھی ہیومن لیول پہ آ کے اس طرح کی بات نہیں کریں گی۔ اس کے برعکس آپ سوچئے، کوئی دنیا کا مشہور شخص جو گناہوں میں زندگی گزار گیا، جس کو پتہ ہے جذبے کیا ہوتے ہیں، ایموشنز کیا ہوتے ہیں، کہاں بندہ پھسلتا ہے، کہاں جذبہ ایک منٹ کے لیے جذبات کے اندر آئے اور گناہ کر کے چلے گئے، اب جب اس کو دوسروں کو بات کرنی پڑے گی، وہ روئے گا کہ نہیں روئے گا؟ اس کی تو آنکھوں سے آنسو نکلیں گے، اس کو اپنا وقت یاد آئے گا۔ تو یاد رکھیے، بعض دفعہ اللہ ہم سے بڑے بڑے گناہ اس لیے کراتا ہے کہ ہم اس کے بعد بڑے بڑے کام نیکیوں کے کر سکے۔ تو ڈونٹ بی گلٹی، گلٹ توبہ کی صورت میں ہو، نیکیوں میں بڑھائیں، لیکن اس کو بنیاد بنا کر نیکیوں سے نہ روکے۔ شیطان گلٹ ڈالتا ہے، چھوڑو تمہاری کہاں قبول ہوگی، تم تو ماضی میں اتنا برا کر چکی، تم تو یہ تھی وہ تھی۔ تو یاد رکھیے، اللہ نے چن لیا۔ موسیٰ میں کیا خوبی تھی، کیا موسیٰ کے پاس ڈگری تھی؟ تڑپ تھی، سچ تھا۔ جس بندے میں سچ ہوتا ہے اللہ اس کو ضرور چنتا ہے۔ اور آپ یہاں بیٹھ کے یہ دعائیں مانگ کے جائیں اگلے 10 پاروں میں کہ اللہ مجھے چن لے، اللہ مجھ سے کچھ کرا لے، اللہ اگر میرے میں کوئی ٹیلنٹ ہے تو اس کو ابھار لے۔ اور میں آپ کو یقین سے کہہ سکتی ہوں، یہ دعا آپ کی قرآن پڑھتے ہوئے ضرور قبول ہوگی، باقیوں کا مجھے نہیں پتا۔ اللہ جب چاہے آپ کی کوئی دکھ سکھ سن لے، بیماریاں سن دور کرے، لیکن قرآن پڑھنے کے دوران اپنی ہدایت کے ساتھ دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ بننے کی دعائیں بڑی قبول ہوتی ہیں، واللہ ہی۔ تب کبھی تھوڑا بہت یہ دین کا کام جو ہوتا ہے اس کو دیکھتی ہوں، تو مجھے اپنا وہ وقت یاد آ جاتا ہے جب میں پہلی دفعہ قرآن سیکھنے بیٹھی، یا جو میرے ابتدائی سفر تھے، میری ٹیچر پڑھا رہی ہوتی تھی اور میرا دماغ کہیں اور ہوتا تھا، واللہ ہی۔ نہ میری دنیا میں اس وقت یہ سارا کچھ تھا جو اس وقت میرے پاس ہے۔ ایک عام عورت، ایک لڑکی جس کو آپ کسی بھی عام معاشرے کی دیکھیں، لیکن میں ہمیشہ کہتی تھی اللہ ان سے یہ کام ہو رہا ہے تو میرے سے بھی لے، اللہ یہ پڑھا سکتی ہے تو میں بھی پڑھاؤں، اللہ یہ سکھا سکتی ہے تو میں بھی سکھاؤں، ان کی زبان پہ قرآن عام ہے تو میری پہ کر دے، یہی سوچتی رہتی تھی پورا وقت، خوابوں میں، خیالوں میں، تصورات میں تھی کہ اللہ کچھ کرا لے، اور پھر دعائیں نکلتی ہیں۔ کبھی کبھی تو مجھے کوئی ایسا نیکی کا موقع جب سامنے آتا ہے تو آنسو نکل آتے ہیں، وہ کلاس روم یاد آ جاتا ہے جہاں بیٹھ کے وہ تڑپی تھی کہ اللہ تو نے اس طرح سنی تھی اس وقت، مجھے تو خیال بھی نہیں آیا۔ تو کبھی ان وقتوں کو ضائع نہ کریں، یہ وقت خود کو کیش کرنے کا، یا تو آپ اللہ کے راستے کے بلانے والے بن جائیں یا نفس کے راستے کے۔ آگے انشاءاللہ آپ جو 26واں 27واں 4 آخری پارے پڑھیں گے، وہ تو پھر آپ کو آپ کا اپنا نہیں رہنے دے گا۔ اس کو پڑھنے کے دوران یا تو پھر آپ من انصاری اللہ بن جاتے ہیں، یا حزب اللہ میں شامل ہوں گے، یا حزب الشیطان میں۔ تو یہ تو میری بات ہے، مثال دیتی ہوں کہ آپ کو جاب آفر ہوتی ہے صدر اوباما کے آفس میں، اور ایک طرف آپ کو جاب آفر ہوتی ہے اس شہر کے کسی چھوٹے سے کلیننگ ڈپارٹمنٹ میں۔ کون عقل مند ہے کس کو چوز کریں؟ پیسے کو چھوڑ دیجئے، مال کو چھوڑ دیجئے، پروٹوکول ہی بہت بڑا ہے۔ چلے غلام ہیں انگریزوں کے، ہیں تو غلام انگریزوں کے نا، یہی بڑی بات ہے ہمارے لیے۔ ہم تو اس پہ بڑے خوش ہیں کہ ہم بڑوں کی جاب کریں۔ تو جس کو اللہ کی جاب مل جائے، جس کے پاس دو چیزوں میں تقابل ہو، وہ اس کو چوز کرے کہ اللہ میں تیرے کام کروں تو میرے کر، تو پھر آپ بتائیے کہ وہ ایک منٹ کا بس فیصلہ ہوتا ہے، اور اس پہ کوئی آپ کو مجبور نہیں کرے گا، یہ صرف وہ کام کرے گا جو خود کرے۔ اس دن ینگ بچیوں کے ساتھ کلاس میں تھی، کسی پروگرام میں تھے، تو میں نے انہیں بعد میں کہا کہ بیٹا آپ میں سے کسی کی امی نے سائن نہیں کرنے آپ کے اس فارم پہ، آپ خود کریں۔ جن کی مائیں کرتی ہیں وہ ہر ہفتے رو رو کے لاتی ہیں ان کو، چلو جائیں، چلو چلتے ہیں، چلو تمہاری میں نے کمٹمنٹ کی۔ اور جو بچیاں خود کرتی ہیں، میں دیکھتی ہوں وہ جاب سے تھکی ہاری آتی ہیں، سیدھا اسکول آتی ہیں، وہ ساری رات کی جاب کر کے آتی ہیں، وہ اسکول آتی ہیں، وہ اس -20s میں آتی ہیں، وہ اسکول میں آتی۔ کیوں؟ کہ یہ ان کے اپنے دل کی عرض تھی۔ تو آئیے ہم سب اپنے لیے دعا کریں۔ دیکھیے قبر میں تو میں نہیں جانا ہے، میری ماں نے تھوڑی جانا ہے، अगर मुझे किसी गुनाह की वजह से दुनिया में तकलीफ आनी है तो मैं नहीं भुगतनी है, आपने थोड़ी भुगतनी है। तो क्यों ना हम यहाँ बैठ के वो फैसले करें, वो दुआएं करें, वो तमन्नाएं करें कि मूसा की तरह अल्लाह हमें भी चुन ले। दुआ कीजिए, अल्लाह मुझे भी चुन ले, अल्लाह मुझे भी दूसरों की हिदायत का जरिया बना, लोग मेरे लिए दुआएं करें, लोगों की दीन का जरिया बनूं, ये नहीं कि मैं खुद नेक बनूं, अल्लाह मुझे दूसरों की नेकी की बात डाल दे।